विभूति नारायण राय की कहानी। किस बात से डरते हैं खुर्शीद साहब? हिंदी से तर्जुमा फहमीदा रियाज। अचानक मिसिस खुर्शीद का फ़ोन आया तो चिंता हुई। 80 पार किए किसी शख्स के घर से बरसों बाद फ़ोन आए तो बुरी खबर का अंदेशा हो सकता है। मिसिस खुर्शीद की बात सुनकर इत्मीनान हुआ। पता चला कि खुर्शीद साहब धीरे धीरे निस्यान का शिकार हो रहे हैं। याददाश्त साथ छोड़ रही है, पुरानी बातें याद आ रही हैं लेकिन ताज़ा चीज़ें भूल जाते हैं। घुटने तो पहले ही जवाब दे गए थे, 4-5 साल पहले मैं उनसे आखिरी बार मिला था, तब वो बैसाखियों के सहारे चलते थे। अब उनका भी साथ छूट गया और व्हील चेयर पर सिमट गए हैं। क्योंकि मकसद मुझे बताना था कि आजकल मुझे बहुत याद करते हैं, रातों में चौंक चौंक कर जाग जाते हैं और मुझे बुलाने की ज़िद करते हैं। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ। हर तीसरे चौथे महीने इलाहाबाद जाना होता है, लेकिन ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मुझे खुर्शीद साहब की खैर खबर भी लेनी चाहिए। बहरहाल मैंने झेपते हुए वादा किया कि जल्द ही इलाहाबाद आकर उनसे मिलूँगा। ये मौका भी पिछले हफ्ते मिल गया। किसी काम से इलाहाबाद जाना था, तय किया कि इस बार खुर्शीद साहब से ज़रूर मिलूंगा। लेकिन इस मुलाकात के बारे में लिखने से पहले उनके बारे में कुछ लिखना ज़रूरी है। खुर्शीद साहब से पहली मुलाकात बनारस में सन 1978 में हुई थी। मैं पुलिस में अपनी नौकरी शुरू कर रहा था और वो मुझसे दुगनी उम्र में पुलिस में एक ऊँचे मकाम पर पहुँच कर रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसमें इतना फ़र्क था कि दोस्ती जैसे रिश्ते का तसव्वुर भी मुश्किल था, लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता बना उसे दोस्ती जैसा ही कुछ कहा जा सकता है। वजह बना दोनों का घुड़सवारी का शौक़। मुझे शौक़ तो था लेकिन खुद एतमादी कुछ कम थी, इसलिए किसी सीधे घोड़े पर सवारी करता। वो पुलिस लाइन के सबसे बदमाश घोड़े को चुनते। जिस घोड़े पर सवार होते उसकी शामत आ जाती। 400 मोटर के ट्रैक पर उसे उस वक्त तक दौड़ाते रहते जब तक उसके मुंह से कफ जारी ना हो जाता और चाल लड़खड़ाने ना लगती। बुरी तरह थकाने के बाद वो उसका पिंड छोड़ते। घोड़े से उतरकर वो जवानों के मेस की तरफ बढ़ते। मेस हवालदार से लकड़ी का मोटा कंधा और कुल्हाड़ी मंगवाते और उसे चीरते। हम हंसते और हौसला बढ़ाते। थकने के बाद वो हर दिन हमें किस्से सुनाते, लतीफ़ों चुटकुलों से भरे। उनके किस्से इतने दिलचस्प होते कि दोहराने के बावजूद ना तो सुनने वाले कम होते और ना बार बार किस्से सुनाना ही ख़त्म होता। किस्से सन 50 में हुए खेलों से शुरू होते जिनमें खुर्शीद साहब को इनाम मिला था। फिर बताया जाता कि कैसे उम्र ज़्यादा होने के बावजूद इस इनाम के बल पर वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज़ हो गए। उनके पास सुनाने के लिए पुलिस जीवन के अनगिनत किस्से थे और सब एक से बढ़कर एक दिलचस्प। मेरे अलावा 2-3 दूसरे भी अफसर वहाँ ऐसे थे जो अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहे थे। वो सब भी खुर्शीद साहब की महफिल में शिरकत करते। खुर्शीद साहब खिलाड़ी थे और जैसा कि खिलाड़ियों के साथ होता है, लिखने पढ़ने से उनका बैर था। कानून कायदे की किताबें मसलन IPC या CSPC उनके लिए लातीनी की तरह थे। दफ्तर में बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर दस्तखत कर सकते थे। किसी फंसाने वाले कागज़ पर दस्तखत करने होते तो बाबू उन्हें ढूंढते। हम उन्हें चढ़ाते कि ये बाबू उन्हें जेल भिजवा देंगे, लेकिन खुर्शीद साहब माँ बहन की गालियाँ देते और अगली फाइल पर दस्तखत करने लगते। पूरी नौकरी में कभी बीमार ना पड़ने वाले खुर्शीद साहब आखिर में इस हालत को पहुँचे। बदकिस्मती से ज़्यादातर खिलाड़ी जिससे 2-4 होते हैं, उनके घुटने जवाब देने लगे। रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही एक जिम बनाकर मोहल्ले के लड़कों को मुफ्त में तालीम देने वाले खुर्शीद साहब पहले तो एक छड़ी के सहारे चले, फिर बैसाखी की मदद ली और आखिर में व्हील चेयर पर टिक गए। पिछली बार जब मैं उनसे मिला था तो वो एक बैसाखी के सहारे चल रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में थक कर व्हील चेयर पर बैठ जाते। मिसिस खुर्शीद हमें तसल्ली देती जाती कि परेशानी की कोई बात नहीं, आज देर तक चले हैं इसीलिए थकान ज़्यादा लग रही होगी। ये मुझसे ज़्यादा खुर्शीद साहब को दिलासा देने की कोशिश थी। वो खुद भी बीच बीच में कहकहा लगा लगा कर बता रहे थे कि अगले कुछ दिनों में वो एकदम चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जब उनके घर पहुंचा, शाम ढल रही थी। एक अजीब सी उदासी पसरी हुई थी। अंदर पहुंचा तो भाएं भाएं करते घर का माहौल ही कुछ और था। एक सन्नाटा सा छाया था। 35 साल पुराना नौकर भी साथ छोड़कर चला गया था। खुर्शीद साहब व्हील चेयर पर उदास बैठे थे। उन्हें मेरे आने की इत्तला थी, इसलिए बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि वो अब ऐसी हालत में नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जा सके, इसलिए मिसेस खुर्शीद मेरे लिए बाहर निकलकर स्वागत करने की पुरानी रस्म भी नहीं निभा सकती थी। मुझे अल्जाइमर के मरीज़ के रूप में बाबूजी को देखने का तजर्बा था। देखते ही अंदाज़ा हो गया कि अभी वो शुरुआती दौर में हैं, ताज़ा चीज़ें भूल रहे हैं और पुरानी बातें याद आ रही हैं, जिन्हें सुनकर मिसेस खुर्शीद भी हैरान थी। मसलन स्कूल के दिनों की कोई शरारत या पुलिस की नौकरी के दौरान का कोई पुराना वाकया। बातें शुरू हुईं रस्मी हालचाल से, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें यादों के रपटने वाली पगडंडी पर ले चला, वो जोश में भरते गए। इतने दिन बाद अपने पति को चहकते देखकर मिसेस खुर्शीद की आंखें भर भर आ रही थीं। लंबे इंतज़ार के बाद वो पल आया जिसका मुझे इंतज़ार था। भाई साहब, आजकल ये बड़े डरे से रहते हैं, रातों को चौंक चौंक कर जाग जाते हैं और आपको बुलाने के लिए कहते हैं। मैंने कितनी मुश्किल से तो आपका नंबर हासिल किया है। किस बात से डरते हैं खुर्शीद साहब? इनके नाम से तो बड़े बड़े चोर बदमाश डरते थे, इन्हें किसका डर? रातों में उठ उठ कर बड़बड़ाने लगते हैं कि पुलिस इन्हें पकड़ ले जाएगी। ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं, मिसेस खुर्शीद ने शिकायती लहजे में कहा। मैंने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। आपको क्यों पकड़ लेगी पुलिस? भाई, हम लोग मुसलमान हैं ना। मैं अचानक खुर्शीद साहब की तरफ देखता रह गया। इतने बरसों की पुलिस की नौकरी करने के बाद ये क्या कह रहे हैं खुर्शीद साहब? इसके बाद एक लंबी कहानी थी जिसे मैंने निस्यान के शुरुआती आसार जाहिर करने वाले एक मरीज की ज़बानी सुना। लेकिन तज्जिया करना हो तो कहा जा सकता है कि झांसी में अपनी तैनाती के दौरान बरामद टैंक के इस्तेमाल शुदा गोलों के जो खोल खुर्शीद साहब पिछले 30-32 बरसों से अपने साथ लिए अलग अलग शहरों में घूमते रहे हैं, वही उनके इस डर के लिए ज़िम्मेदार हैं। हुआ कुछ ऐसे कि झांसी में एक आला पुलिस अफसर की हैसियत से वो एक थाने में मुआयने के लिए पहुंचे, तो थानेदार ने बताया कि पिछली रात एक कबाड़ी के यहाँ से टैंक के कुछ गोलों के खोल बरामद हुए हैं। चांदमारी के बाद फायरिंग कारतूस बिखरे पड़े रहते थे। रेंज से गोलियों या गोलों के खोल इकट्ठा किए जाते हैं। ये पिस्तौल, राइफल, तोप या टैंकों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों या गोलों के हो सकते हैं। चांदमारी ख़त्म होने पर फायरिंग पलटन के जवान खोल बीन लेते हैं और फिर एक पुरानी रिवायत के तहत उन्हें बांट लिया जाता है। अक्सर होता यह है कि फायरिंग ख़त्म होते ही आसपास की गरीब बस्तियों के औरत, मर्द या बच्चे मैदान में कूद जाते हैं और जवानों की झिड़कियों की परवाह किए बिना खोल बीनने की कोशिश करते हैं। पीतल के ये खोल कबाड़ियों के यहाँ औने पौने भाव बेचकर गरीब कुछ पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि कबाड़ी चोरी छुपे खोलों की खरीद करते हैं, इसलिए पुलिस उनके यहाँ छापे मारती रहती है। एक छापे में बरामद होने वाले खोल उस थानेदार के हाथ आ गए। खुर्शीद साहब फूल पत्तियों, पेड़ पौधों और लॉन के बड़े शौकीन थे। उनके बंगले में घुसते ही सबसे पहले उनकी लॉन आपका मन मोहती थी। खोलों को देखते ही उनकी तबीयत उन पर माइल हो गई। अभी उनकी लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, उन्होंने बरामद होने वाले खोलों से 10 अपने लिए छांटे, बाजार से उनमें छल्ले जड़वाए और जंजीर की लहरियां लगवाकर लॉन के चारों तरफ सजा दिए। अक्सर फौजी मैसों या अफसरों के बंगलों पर इस तरह की सजावट नज़र आती है। मैंने बरसों इस सजावट को उनके बंगले की लाश की शोभा बढ़ाते हुए देखा था। रिटायरमेंट के बाद जब वो इलाहाबाद के अपने घर में रहने के लिए आए, तो अपने दूसरे पड़ोसियों की तरह उन्होंने भी सड़क और चारदीवारी के बीच खुली जगह को तारों से घेर कर कुछ पेड़ पौधे लगा दिए। यहीं सजे थे ये खोल भी। मैंने पिछली बार आने तक उन्हें देखा था। मिसेस खुर्शीद ने बताया पिछले दिनों 2 चोरी हो गए थे, इसलिए इन्होंने सब उठवा कर अंदर रखवा दिए हैं। अब ये नया मसला उठ खड़ा हुआ है कि खुर्शीद साहब रातों को चौंक चौंक कर उठते हैं और कहते हैं कि पुलिस उन्हें इन खोलों की वजह से पकड़ेगी और कहेगी कि वो बम बनाते हैं। وہ چاہتی تھیں کہ میں ان خولوں کو وہاں سے اٹھا لے جاؤں تاکہ ان سے خورشید صاحب کا پیچھا چھوٹے۔ انہوں نے سوچا کہ کسی کباڑی کے ہاتھ بیچ دوں، لیکن خورشید صاحب نہیں مانے کہ اگر کبھی کباڑی پکڑا گیا تو ان کا نام لے گا اور پولیس ان کے یہاں پہنچ جائے گی۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، کیا ایسے بھی کہیں ہوتا ہے کہ ایک ریٹائرڈ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پولیس جھوٹے موٹے معاملے میں پھنسا دے؟ وہ زیادہ بات کر سکنے کی حالت میں نہیں تھے، بس ایک ہی بات بیچ میں دہراتے جا رہے تھے، بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک نسیان کے مریض سے آپ ریاست ہند اور اس کے اقلیتوں کے رشتے پر کیا بات کر سکتے ہیں۔ میں نے چپ چاپ خول اپنی گاڑی میں لدوائے اور سر جھکائے وہاں سے نکل آیا۔